ओम शांति, ओम शांति। दो दिन पहले ही हम सभी ने रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया, बाबा से प्रतिज्ञा भी की, प्रॉमिस किया पवित्रता का, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। और कल जब डायमंड हॉल में भोग लगा तो बाबा का संदेश यही था कि अभी संसार में जो आत्माएं तड़प रही है दुख से, डर से, तनाव से, तो उन आत्माओं को अंजलि देने का कार्य आप सभी बाबा के बच्चों को करना है। और खास बाबा ने ये अंडरलाइन कराया, आप सबने सुना होगा संदेश कल का, तो बाबा ने ये दो बातों का अंडरलाइन कराया कि पवित्रता और प्रेम। क्योंकि अभी कलयुगी दुनिया के लास्ट में जो आत्माएं अभी है, उन आत्माओं को इतनी ताकत नहीं है जो बाबा से शक्ति ले, बाबा से ताकत ले, ज्ञान ले, तो इतनी ताकत नहीं है, तो उनको प्रेम की आवश्यकता है। और वो भी कौन सा प्रेम? निस्वार्थ आत्मिक प्रेम की आवश्यकता है, परमात्मा प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा प्रेम में ही वो हीलिंग पावर है, वो शक्ति है आत्मा के जन्म जन्मांतर के जो दुख है, दर्द है, उसको मिटाने की ताकत परमात्मा प्रेम में है। और दूसरी बात है, जो भी समस्याएं संसार में दिखाई दे रहा है उसका जड़ है अपवित्रता, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान के भिन्न भिन्न प्रकार के कारण से इतनी समस्याएं दिखाई दे रही है। तो पवित्रता की सख्त जरूरत है। वैसे तो दुनिया में काफी साधु संन्यासी है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध जीवन वो जी रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये पर्याप्त नहीं है। वो जो बाबा के बच्चों के अंदर पवित्रता है वो जरूरी है। बाबा के बच्चों की जो पवित्रता है और साधु संतों की जो पवित्रता है, उनमें क्या अंतर है? उनमें क्या अंतर है? वो तो ब्रह्मचारी है ही है, वो शुद्ध आहार भी लेते हैं, उनका जीवन शुद्ध है, फिर भी अंतर क्या है? सत्य सत्य ज्ञान, सत्य समझ की कमी के कारण से उसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ये बात बताया है कि उनमें और हमारे में क्या अंतर है, कि बाबा के बच्चों में सत्य ज्ञान है, तीन बातों का सत्य ज्ञान है, जिसके आधार से पवित्रता की गहराई उन आत्माओं में आती है। तीन बातें कौन सी है? स्वयं की सत्य पहचान, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, और ये सत्य समझ, और मुझ आत्मा के निजी गुण क्या है, शक्तियां क्या है, स्वरूप क्या है, मेरा धाम क्या है, तो सत्य समझ हमें है। और दुनिया वाले कितना भी शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन गोल 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 नेति नेति कर लेते हैं या कुछ और कर देते हैं, बहुत गोल गोल है ना। लेकिन स्पष्ट ज्ञान खुद के बारे में बाबा ने हमें समझाया है, आप कौन हो, है ना। तो खुद के बारे में सत्य समझ, और दूसरी बात है शिव बाबा के बारे में, भगवान के बारे में सत्य पहचान, सत्य समझ, सत्य ज्ञान, है ना। कि बहुत सारे मतमतांतरे हैं भगवान के बारे में, लेकिन बाबा बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे गुण क्या है, मैं आकर के क्या करता हूं, कब आता हूं और कब नहीं आता हूं। और हम बच्चे उसको समझे हैं। और बाबा दूसरी बात में ये कहते हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई है जो मुझे यथार्थ पहचानते हैं, बाबा के बच्चों में भी, ब्राह्मणों में भी, है ना। इतने हजारों बाबा के बच्चे हैं विश्व भर में, उनमें भी बाबा कहते हैं कोई में भी कोई है जो मुझे यथार्थ पहचानते हैं। तो अभी हमें बाबा को यथार्थ पहचानने की जरूरत है, उसके आधार से ही पवित्रता हम धारण कर सकते हैं। और तीसरी बात जो बाबा कहते हैं, सत्य ज्ञान कालचक्र के बारे में, समय के बारे में। दुनिया वालों ने बहुत लाखों वर्ष कह दिया, हजारों वर्ष कह दिया, बहुत सारी बातें हैं। बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया है कि कौन सा समय चल रहा है और कितने युग है और अभी के बाद क्या होने वाला है, और उसके साथ साथ मेरा पार्ट उस कालचक्र में क्या है, वो भी बाबा ने हमें समझा दिया है। तो वो स्पष्टता है, सत्य बाबा सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इन तीन बातों के आधार से हमारी पवित्रता और पावरफुल हो जाता है। और बाबा क्यों पवित्रता के बारे में ज्यादा एम्फसाइज करते हैं या फिर जोर देते हैं, सबसे पहला स्लोगन यज्ञ का कौन सा था, योगी बनो पवित्र बनो, दो बातें बस, उसके सार में हमें टिकना है। पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्रता के कारण से ही यज्ञ में इतने हंगामे हुए, स्टार्टिंग में इतने हंगामे हुए, बहुत सारे लोग आकर के ब्रह्मा बाबा को बोला उस टाइम पे, बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सुनाते हो और माना धारणाएं भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात में अगर थोड़ा सा ढीला करेंगे ना तो आप देखना आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा बाबा थोड़ा सा पवित्रता में ढीला करो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो बाबा ने क्या बोला होगा, बाबा ने क्या बोला होगा, बाबा ने ये कहा कि ये जो हुक्म है ना उसका है, ब्रह्मा बाबा का नहीं है, शिव बाबा का है। और दूसरी बात, बाबा को, शिव बाबा को फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए, वारिस चाहिए, सतयुगी दुनिया में जाने के लिए लायक बच्चे चाहिए, है ना, फॉलोअर्स नहीं चाहिए। तो सतयुगी दुनिया में जो पवित्र संसार है, पवित्र राज्य है, तो उसमें राज्य करने के लिए पवित्र आत्माएं ही चाहिए। तो इसीलिए बाबा बहुत इसको जैसे बहुत ज्यादा इसमें एम्फसाइज करते हैं। और बाबा बहुत अलग अलग बात पवित्रता के बारे में कहते हैं, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है, जैसे ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते, भोजन के बिना महीनों रह सकते हैं, पानी के कुछ हफ्ते रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। ऐसे बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है पवित्रता। क्योंकि जो बाबा आकर के बहुत अबलाओं को मुक्त किया, बहुत अबलाओं को सुख दिया, उनको जीवदान दिया, सुख दिया, पवित्रता जीवदान है। बाबा ये भी कहते हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, खुशबू है, श्रृंगार है। जो माताएं हैं श्रृंगार करती हैं, है ना, और ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। पवित्रता के बिना ब्राह्मण जीवन कुछ भी नहीं है, और ब्राह्मण जीवन की जो पवित्रता है तो उसको सहज बनाने के लिए, तो सहज कैसे बनाए, क्योंकि दुनिया वाले तो कहते हैं बहुत मुश्किल है, आग कपूस साथ में नहीं रह सकते, लेकिन आग कपूस साथ में रह करके पवित्र रह सकते हैं। बाबा की शक्ति ये है, लेकिन बाबा कहते हैं मेहनत वाला काम नहीं है, बहुत इजी है। कैसे इजी हो जाएगा, जब वरदान के रूप में बाबा से लेते हैं तो वो सहज हो जाता है, बाबा को साथी बनाते हैं, है ना। जो माताएं हैं तो वो जो हस्बैंड जो बाबा को जब साथी बनाते हैं तो वो कंपेनियन के रूप में जब हम याद करते हैं तो वो समर्पण भाव बहुत इजीली सहज रूप से आ सकता है। लेकिन बाबा एक मुरली में ये भी कहा है कि साथी के रूप में जब अनुभव करते हैं ना, अगर घर में भी जब साथी होते युगल होते हैं तो कभी कभी किटपिट भी हो जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कोई थोड़ा बहुत अनबन भी हो जाता है, दो लोग हैं तो संस्कारों का थोड़ा बहुत टकराव तो होगा ही। तो कहीं मुरलियों में बाबा ने कहा है कि साथीपन का अनुभव तो करना है, लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कंबाइन स्वरूप का अनुभव। जब मैं और बाबा एक हो गए, कंबाइन हो गए, तो वहां टकराव की बात ही नहीं है। जितना मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होती हूं तो पवित्रता इजी हो जाता है, वहां मुश्किल नहीं। क्यों, बाबा के अंदर जो भी शक्ति गुण है मुझ आत्मा के अंदर आई जाती है, है ना। तो वो अनुभव हमें करने की जरूरत है। और बाबा ने ये भी कहा पवित्रता सुख शांति की, अगर सुख और शांति चाहिए तो पवित्रता नहीं चाहिए लेकिन सुख शांति चाहिए, हो सकता है, हो सकता है पवित्रता के बिना सुख शांति। जी वो सुपरफिशियल हो जाता है, लेकिन जो गहराई की बात स्थाई जो रूप से होगा हमेशा के लिए जो होगा, बाबा ने ये पक्का अंडरलाइन कराया है पवित्रता सुख शांति की जननी है। सुख शांति अल्पकाल के लिए तो हम अनुभव कर लेंगे, लेकिन लंबे काल के, ना केवल इस जन्म के लिए लेकिन बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा जब दे रहे हैं तो उसके लिए पवित्रता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर अपने आपके जीवन, अपने जीवन में चेक करने की बात है, कभी ना कभी अगर मैं दुखी हो रही हूं, परेशान हो रही हूं, अशांति की अनुभूति कर रही हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति के कारण से मैं अशांत हो रही हूं, इसके कारण से मैं परेशान हो रही हूं, इसके कारण से मैं दुखी हो रही हूं, ये राइट है, ये राइट है, हाँ? नहीं, कहीं ना कहीं मुझ आत्मा के अंदर पवित्रता की कमी है जिसके कारण से मैं आत्मा परेशान दुखी हो रही हूं, है ना। ये अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अगर खुद के जीवन के भी दुख हम हर सकते हैं और दूसरों के दुख के जीवन के दुख भी हम हर सकते हैं अपनी पवित्रता के आधार से। तो इसीलिए बाबा ने 5 बातें कही है। स्वस्वरूप पवित्रता है, स्वधर्म पवित्रता है, धारणा पवित्रता है, स्व का धाम पवित्रता है, और स्वराज्य जो सत्युग में जाने वाले हैं वो पवित्रता है, और स्व के जो पिता है वो पतित पावन है। तो इसको जब रुति से समर्पति आएगी, मुश्किल नहीं है, केवल मुझे याद करना है कि मैं बस स्मृति से समर्पति, बाबा ने कहा है। जब याद रखा तो शक्ति ऑटोमेटिक। तो इसलिए अभी हम देखते हैं कि 8 लेवल के जो पवित्रता है वो कौन से है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र है ना, केवल एक बात में पवित्रता नहीं है। कि और कवच कब बन सकता है, जब हम 8 ही लेवल के वो पवित्रता का अनुभव। तब जो एक संदेश में कुछ दिनों पहले जब रुक्मिणी बहन के लिए जब वतन गए थे तो संदेश दिया था 5 कवच। जब रक्षा करनी है तो सबसे पहला रक्षा है स्वयं की रक्षा। स्वयं की रक्षा, मर्यादाओं की रक्षा, और फिर यज्ञ की रक्षा, कुल की रक्षा, और विश्व की रक्षा। स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक, कुल रक्षक और विश्व रक्षक। केवल खुद को रक्षा करने की बात नहीं है ना, यहां पूरे 5 ही लेवल की रक्षा करने की बात है। तो इसीलिए हमें हर बात में सूक्ष्मता में जाकर के हमें पवित्रता की अनुभूति या धारणा करने की जरूरत है। सबसे पहले जो मोटी चीज से फिर सूक्ष्मता की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो मोटे रूप में पवित्रता की बात यूजली कहा जाता है वो है संबंध, संपर्क, संबंधों में, रिलेशनशिप्स में हमारी पवित्रता की बात है। इसमें तो ब्रह्मचर्य बाबा ने स्पष्ट बोल दिया, ये बहुत ही जरूरी है। आत्मा को एकदम तमोप्रधान से सतोप्रधान के तरफ तक ले जाना है, चढ़ाई चढ़नी है तो ताकत चाहिए, है ना। अगर आप सोचे कि 84 स्टोरीज है बिल्डिंग में, अगर आपको चढ़ना है, चढ़ने के लिए ताकत चाहिए ना। ताकत के बिना आप चढ़ नहीं सकते हैं। चढ़ने के लिए पवित्रता की शक्ति की आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने के लिए वो शक्ति बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है संबंध, संपर्क में और गहराई से पवित्रता लाने के लिए बाबा ने ये कहा, सम्मान में स्थित होते सम्मान दो, सम्मान दो। स्वमान, स्वमान मेरा क्या है, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। स्वधर्म में जितना हम टिकते हैं, आत्मिक स्थिति में जितना हम टिकते हैं, उतना हम दूसरों को सम्मान देते हैं। अगर ये दोनों नहीं है, स्वमान और सम्मान जब नहीं है, तब क्या होता है, अपमान की अनुभूति होती है, अभिमान आ जाता है, कि मैं फलाना हूं मेरे स्किल्स को लेकर के, मेरे शरीर को लेकर के, मेरे गुणों को लेकर के, मेरे बहुत सारी बातों को लेकर के अभिमान आने के कारण से फिर अपमान, दूसरों को अपमान करना शुरू करते हैं। फिर वहां लड़ाई झगड़े या झुकाव, लगाव, टकराव, ये सब बातें आना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, जब माला देखते हैं ना, माला जब वैजयंती माला देखते हैं या माला जो फेरते हैं भक्ति मार्ग में उसको देखते हैं, तो माला को देखते हैं, तो मणकों को देखते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ टच कर रहे होते हैं, वो पूरा चिपके हुए भी नहीं होते हैं या दूर दूर भी नहीं होते हैं। हर एक की इंडिविजुअलिटी है, हर मणके की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, लेकिन केवल टच कर रहे हैं तब जाकर एक सूत्र में बंधे हुए हैं, इसीलिए उसका महत्व है। हम भी हमारे संबंध संपर्क में क्या हम मणके, आत्मा मणके हैं, मणके हैं, तो बाबा कहते हैं उस आपको त्याग भी नहीं करना है, संन्यास भी नहीं करना है, घर गृहस्थ में रह करके, साथ में रह करके जीवन जीना है, पवित्र रहना है, वो फिर मणका। हम मेरा इंडिविजुअलिटी है, मैं आत्मा हूं, स्वमान में स्थित हूं, और दूसरी आत्मा को भी मैं सम्मान दे रही हूं। वहां डिपेंडेंसी नहीं है, चिपके हुए नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, और दूर दूर भी नहीं है, है ना? तो वो बैलेंस तब आएगा जब मैं स्वमान में स्थित होकर के सम्मान में एक दूसरे को देती हूं। क्योंकि डिपेंडेंसी होगा तो क्या होगा, जैसे अपाहिज होते हैं ना, वो क्रचेस के बिना वो चल नहीं सकते, सहारे के बिना वो चल नहीं सकते। अगर दूसरे ऊपर मैं सहारा बना दूं दूसरे को, तो अगर वो व्यक्ति नहीं है, मैं फिर डिप्रेशन में चली जाऊं, टेंशन में चली जाऊं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा महसूस होता, उसके बिना मैं हुई नहीं ऐसा लगता है। और फिर एकदम इंडिपेंडेंट, आजकल की दुनिया में बहुत इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं ना, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। तो माला के मणके की तरह ना डिपेंडेंट ना इंडिपेंडेंट, लेकिन इंटरडिपेंडेंट, मुझे आपकी आवश्यकता है, आपको मेरी आवश्यकता है, लेकिन चिपके हुए नहीं है, दूर भी नहीं है, स्वमान में रहते हुए सम्मान देते चले, तो संबंध संपर्क में हम पवित्रता धारण कर सकते हैं। और दूसरी बात है कर्म में पवित्रता, कर्म और कर्मेंद्रिया। बाबा ने ये कहा कि हर कर्मेंद्रियों का गायन क्या है, कमल फूल है ना, कमल नयन, हस्त कमल, सबको पाद कमल, हर चीज कमल के साथ उनके तुलना किया गया है, कि माना कर्म करते समय निमित मात्र मैं कर्म कर रही हूं, अनासक्त वृत्ति। तो अनासक्त वृत्ति रखते हुए जब मैं कर्म करती चलती हूं, तो फिर उसमें पवित्र कर, उसको कर पवित्र कर्म कहा जा सकता है। और बाबा ने ये भी कहा तो पवित्रता हमारी दिनचर्या में भी, यथार्थ दिनचर्या अगर है तो फिर पवित्र कहा जाता है। अगर उस दिनचर्या में भी थोड़ा ऊपर नीचे है, तो बाबा कहते हैं वो अपवित्रता में गिना जाता है। बाबा ने जो दिनचर्या बना के दी है, तो क्या मैं उसमें चलती हूं? सूक्ष्म रूप, अपवित्रता का सूक्ष्म रूप क्या है, आलस्य और अलबेलापन। वहां से ही एंट्री होता है अपवित्रता का। तो इसीलिए दिनचर्या में भी वो दिखाई देना चाहिए, हर कर्मेंद्रियों में भी वो दिखाई देना चाहिए, और फिर खास क्या है, बोल में पवित्रता। बोल में पवित्रता माना एक स्लोगन है ना हमारा, कम बोलो मीठा बोलो धीरे बोलो। क्योंकि जो मन में है हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तुरंत बोल से एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए जब बोल में आ जाते हैं तो पता चलता है कि अंदर मन में क्या चल रहा है। और एक मुरली में बाबा ने यह भी कहा कि केवल सत्य बोलना पवित्रता नहीं है, यथार्थ बोलना, समय के अनुसार युक्ति युक्त बोलना, यथार्थ बोलना, यह है पवित्रता। हर कर्म में यथार्थता चाहिए, तब जाकर के वो संपूर्ण पवित्रता में गिना जाता है। और तीसरी बात है शरीर। शारीरिक रूप से भी हमें पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है, और शारीरिक रूप से शुद्ध मन, वो तो ब्रह्मचर्य तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो सूक्ष्मता के तरफ जब चले आते हैं, ड्रेसिंग सेंस, किस रूप से मैं अपना ड्रेसिंग कर रही हूं। क्योंकि आज कलयुगी दुनिया में ड्रेसिंग देखते हैं, किस प्रकार से वस्त्र पहनते हैं, है ना, मर्यादित वस्त्र क्या मैं पहन रही हूं। आजकल की दुनिया में तो लोग कह देते हैं माय बॉडी माय मेरे, मेरा शरीर है, मैं जिस जैसे ड्रेस करना चाहूं मैं ड्रेस कर सकती हूं। तो बाबा कहते हैं नहीं, मर्यादित आपको वस्त्र पहनना है। क्यों? मेरे शरीर के तरफ किसी का भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। मैं निमित्त क्यों बनूं, है ना? ये शरीर मेरे लिए क्या है, अंग प्रदर्शन का एक माध्यम है? नहीं, ये शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा इस रथ की रथी हूं। तो रथ की देखभाल करना मेरी जवाबदारी है, इसको स्वस्थ रखना मेरी जिम्मेदारी है, उसको अच्छा खुराक देना, उसको एक्सरसाइज देना, उसको स्वस्थ रखना, ये बहुत जरूरी है, इसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। कहीं योगी कहते हैं कि मतलब दूसरे प्रकार से भी कहते हैं, बाबा देखभाल कर लेंगे, बाबा देख लेंगे, हम ध्यान ही नहीं रखते हैं शरीर के हेल्थ के लिए। बाबा कहते हैं नहीं, संपूर्ण ज्ञानी वो है जो अपने शरीर का भी ज्ञान जिसको है ना, इसकी भी देखभाल करना है, लेकिन मेरे शरीर के प्रति किसी का भी आकर्षण ना हो, वो वाइब्रेशन मेरा पवित्र रहे। कई लोग कहते हैं मेरा दृष्टि मेरी वृत्ति और मैं तो पवित्र पवित्र हूं, लेकिन दूसरों का मेरे प्रति अपवित्रता है। तो वो कहीं ना कहीं हम उसके लिए निमित्त बनते हैं, मेरे वाइब्रेशंस कुछ ना कुछ उसमें अपवित्रता का अंश है, जिस कारण से मेरे देह के प्रति वो लोग देख रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं। स्थिति इतना पावरफुल हो तो ताकि फिर मेरे देह के प्रति वो आकर्षण ना हो। और फिर इसके साथ साथ आता है पवित्र भोजन, है ना। बाबा ने क्या बोला है पवित्र भोजन के बारे में, क्यों जरूरी है? जैसा अन्न वैसा मन। पूरी तरह जो अन्न पेट में जाता है उसका सीधा असर मन पर पड़ता है। पवित्र अन्न का, अन्न की परिभाषा क्या है, पवित्र अन्न की परिभाषा क्या है? सात्विक भोजन, वेजिटेरियन भोजन, हाँ वो सब कुछ है ही है। आजकल तो दुनिया में तो वीगन है, वो बहुत सारी बातें आ रही है, वो सब अपने अपने हिसाब से वो लोग कर सकते हैं, लेकिन पवित्र भोजन माना सात्विक भोजन के साथ साथ योग में पकाया हुआ और योग युक्त होकर के ग्रहण जब हम करते, भोग स्वीकार करा करके फिर ग्रहण जो करते हैं उसको पवित्र भोजन कहा। एक गीत है ना अपना जो 7:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, जहां मेरा धन होगा वहां मेरा तन मन होगा, जहां मेरा मन होगा वहां मेरा तन होगा, है ना। तो इसलिए तीनों कनेक्टेड है, धन मन और तन, है ना। अगर मन तो बहुत सूक्ष्म है, उसको शुद्धिकरण करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो स्थूल चीज से तो हम वहां पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अगर मन को ठीक करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, अन्न को ठीक करना होगा। जो ग्रहण कर रहे हैं उसको जब हम ठीक करेंगे, धीरे धीरे जाकर के मन भी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पवित्र अन्न का ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और फिर नेक्स्ट लेवल में चौथी पॉइंट अगर लेते हैं, सबसे पहला हुआ संबंध संपर्क, दूसरा हुआ कर्म, तीसरी बात हो गई शरीर और भोजन, ये सब ना ड्रेसिंग ये सब हो गया, और सूक्ष्मता की तरफ चलते हैं अभी, मन और बुद्धि, है ना। मन और बुद्धि की पवित्रता है ना, उसको क्या कहेंगे, मन में पवित्रता क्या है कि कोई भी प्रकार के नेगेटिव विचार ना हो, उसको कहते हैं पवित्र मन, है ना। और पवित्र बुद्धि जिसके ऊपर किसी का भी असर ना पड़े, किसी के भी विशेषता, किसी के भी अवगुण, भले जानने के हिसाब से जाने लेकिन फिर वो जो जैसे मेमोरी में स्टोर हो जाए और उसके आधार से मेरा निर्णय हो, वो नहीं होना चाहिए। बुद्धि की सफाई, मन बुद्धि की सफाई बार बार करने की जरूरत है। जीवंत मिसाल प्रकाशमणि दादी जी को देखा है ना, तो सुबह कोई ऐसा मधुबन निवासी कोई गलती की या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और बड़ी दादी उस भाई को बुला करके थोड़े डांटा, जो भी दादी थोड़ा बहुत समझाने दी, थोड़ी शिक्षाएं दी, थोड़ा बहुत स्ट्रांगली थोड़ा सा फर्म होकर के दीदी दादी ने शिक्षाएं दी। फिर उसके बाद शाम को जब वो भाई फिर से दादी जी से मिलते हैं, दादी के मन में कुछ भी नहीं है, और उसी प्यार से उसी भावना से उस भाई के साथ बात कर रहे हैं। माना ये है मन बुद्धि साफ। जो सुबह हुआ हो गई ना, ठीक है मैंने शिक्षाएं दी, तो वो फिर उसका कर्म जाने, बाबा जाने, बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शिक्षाएं देना, दे दी, वो फॉलो करे ना करे फिर देखा जाएगा, लेकिन वो बात फिर शाम को दादी के व्यवहार में दिखाई नहीं देता था। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 साल पहले वाली बात, 15 साल पहले वाली बात, 20 साल पहले वाली बात, वो सारा लेकर के यहां जमा करे हुए होते हैं और वो बार बार खुरेद करके निकाल रहे हैं। उस दिन उसने ऐसा बोला था, उस दिन उसने ऐसा किया था, तो याद कर करके हम फिर परेशान हो रहे हैं, फिर उसका रिवेंज लेने की कोशिश कर रही है, परेशान हो रही है। इसको मन और बुद्धि की पवित्रता कहेंगे? नहीं। जितना साफ सुथरा उतना हम लाइट रह सकते हैं, है ना। और साफ कैसे करें, मन और बुद्धि को साफ कैसे करें, क्योंकि हर रोज जो कमरा गंदा हो रहा है, हर रोज डस्टिंग की जरूरत होती है, जहां ज्यादा वहां ट्रैफिक है, धूल मिट्टी है, हर रोज सफाई की जरूरत होती है। अगर एक दिन भी सफाई ना करे तो वो धूल मिट्टी जम जाता है ना। फिर एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद सफाई करने की कोशिश करे, बहुत मुश्किल होता है, और दाग धब्बे भी नहीं जाते इतनी जल्दी, है ना। तो इसीलिए हर रोज सफाई करने की जरूरत है। इसलिए बाबा ने दिनचर्या बना के दिया है सुबह अमृत वेले का योग। जितना अमृत वेले का योग शक्तिशाली होगा तो मन बहुत इजीली वो साफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना अमृत वेले में बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए सफाई इजी हो जाता है। और दूसरी बात बाबा ने कही है, रात को सोने से पहले चार्ट लिख करके सारा कुछ पोता मेल मुझे दे दो। सारा कुछ हो गया, इसके साथ लड़ाई हुए हुआ, वो हुआ, परेशान हुआ, ये हुआ, जो भी है पोता मेल बाबा को दे करके यहां काली खाली करके फिर जब हम सोते हैं स्लेट एकदम साफ है ना। लेकिन उस परेशानियों के साथ जब हम सोते हैं तो फिर अगले दिन वही बात, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, ये बात, ये बहुत उसको हम रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मन और बुद्धि को जितना साफ रखेंगे उतना दूसरी बातों के लिए सहज हो जाएगा। और नेक्स्ट बात है दृष्टि। बाबा कहते हैं पांव पड़ने की जरूरत नहीं है, दृष्टि लो। बाबा से भी दृष्टि लो, भाई बहनों से भी दृष्टि लो। दृष्टि से वो वाइब्रेशंस, वो शक्ति का संचार होता है ना। डबल फॉरेनर्स का जब प्रोग्राम चल रहा था, एक ना एक ऐसे मेहमानों का कुछ ऐसे कुछ पीस ऑफ माइंड या फिर ऐसा कॉल ऑफ टाइम कुछ हो रहा था, तो एक बहुत बड़े मीडिया पर्सन आए थे, जर्नलिस्ट आई थी एक बहन, तो नीचे गए और दादी जानकी के साथ उनका इंटरव्यू था। जाते जाते दीदी दादी का इंटरव्यू करना था, तो शक्ति भवन के बाहर वो जो सिटिंग, ये जो लॉन था पहले, अभी तो अव्यक्ति लोक है, वो लॉन था पहले, तो वहां धूप में, ठंडी के दिन थे तो धूप में बैठ करके उनको इंटरव्यू लेना था। तो दादी ने सिर्फ पूछा उस बहन को, क्या अच्छा लगा आपको? तो उसने कहा कि दादी मैं भारत बहुत बार आ चुकी हूं और बहुत सारे जो भक्ति मार्ग के जो जगह है ना, तीर्थ स्थान, तो वहां गई हूं, तो लेकिन वहां बहुत सब जगह पर कुछ ना कुछ, जैसे उनके पीठ होता है, मतलब उसके उनकी कुर्सी होती है महामंडलेश्वरों के या कुछ ऐसा होता है, बहुत अलग है, लेकिन यहां दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी ब्रह्म कुमारी इसमें। एक है उनका कोई गद्दी नहीं है, कोई महामंडलेश्वर नहीं है, कोई गद्दी नहीं है, कोई भी जाकर के उस जगह पर बैठ करके क्लास करा सकते हैं, माने जो भी जैसे टीचर्स है, जो भी ऐसे कोई पर्टिकुलर चीफ, जैसे संस्था के चीफ के अलग जैसे गद्दी ऐसे नहीं है, तो हर एक को उस रीति से, आत्मिक रीति से हम व्यवहार करते, तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात जो बहुत अच्छा लगा, जब भी बात करते हैं आंखों में देख करके बात करते हैं, कोई आंखें चुराते नहीं है। आंखें जब कब चुराते हैं आंखें, जब कोई गलती कर रहे हो, कोई गिल्ट फील हो रहा हो, अपने आप को छिपाने के लिए आंख चुराते हैं, देखते नहीं है, यहां देख करके वहां देख करके आंखों में आंख डाल करके नहीं बात करते हैं। लेकिन यहां चाहे वो स्पीकर्स, चाहे वो रास्ते में चलते कोई भी, सभी जब ये बात करते हैं आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं, इससे सिद्ध होता है यहां सत्यता है, है ना। उसने नोट किया है ना, तो ये दृष्टि से सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति का संचार होता है। और सबसे ज्यादा शक्ति का नष्ट कहां से होता है पता है? शक्तियों को का नष्ट कहां से होता है? आंखों से, दृष्टि से। कई दृष्टि डूब गई, यहां देखा वहां देखा, ये क्या कर रहा है वहां क्या कर रहा है, तो वो उसको देखने में ही आत्मा की शक्ति बहुत नष्ट होता है। और योगियों का, योगियों की दृष्टि कैसा होता है, उनकी आंखें कैसी होती है योगियों की, योगियों की आंखें कैसे होता है, निर्मल तो है, स्थिर होता है, निर्मल तो है ही है, स्थिर, ऐसा नहीं है कि ढूंढ रही है, इधर उधर देख रही है, उधर देख रही है, कर रहे कर रहे, कोई ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं ना कभी कभी कमरे के अंदर आते ही इधर उधर देखना शुरू करते हैं, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी है, या क्या है यहां, क्या है वो, क्या है क्या, इसमें शक्ति बहुत नष्ट होता है। योगियों की दृष्टि स्थिर होना चाहिए, कहीं भी डूबना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ना, आंखें डूबी माना अच्छा लगा, या अच्छा, इच्छा नहीं है अच्छा लगा, कहते हैं ना, इच्छा नहीं है अच्छा लगा, वो भी बाबा कहते हैं ये आंख डूबना कहते हैं, है ना, किसी की विशेषताओं पर लट्टू हो जाना, वो इनके बिना तो कोई है ही नहीं, यही योग करा ये हो जाए, तो वो सब अटैचमेंट चटकना ये सब कुछ उससे शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको बहुत बचा के रखना है, नजरों को बहुत बचा के रखना है, इसीलिए कहते हैं बहुत जल्दी नजर लग जाता है किसी का, क्यों, नजर से ही वो नेगेटिव वाइब्रेशन जाता है ना, इच्छा की नजर से देखते हैं तो वो नजर लग जाती है, तो इसीलिए इसको बहुत, योगियों को तो नजर बहुत बचा करके रखने की जरूरत है, नहीं तो फिर शक्ति, एक तरफ से योग बहुत कर रहे हैं और दूसरे तरफ से वो ड्रेन आउट हो रहा है वो शक्ति सारा, है ना, उसको बचा के रखना। और नेक्स्ट बात है और गहराई, और अंदर जल चले, कौन सी बात ले अभी, वृत्ति, है ना, वृत्ति को हम पवित्र कैसे बनाएं, वृत्ति माना इंटेंशन, किस इंटेंशन से मैं कर्म करती हूं, किस वृत्ति से मैं, वृत्ति कैसे क्रिएट होता है, वृत्त माना राउंड, है ना, वृत्त माना सर्कल, है ना, वृत्त से वृत्ति बनी, है ना, जो भी बात घटी, घटनाएं घटी, उसको बार बार मैंने रिपीट किया, यह ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं होना चाहिए, तो जितने बार मैं यहां रिपीट करती हूं वृत्त, है ना, सर्कल रिपीट करती हूं, जितने बार मैं रिपीट करती हूं, फिर से मेरी वृत्ति बन गई उस व्यक्ति के प्रति, जब भी वो व्यक्ति मेरे सामने आते हैं उसी वृत्ति से मैं देखना शुरू करती हूं। इसलिए बाबा कहते हैं रोज मुरली सुनने की क्यों जरूरत है, मुरली सुनने से हम अपने वृत्ति को चेंज करते हैं, ज्ञान की शक्ति से जो नेगेटिव वृत्ति हो गया ना, सर्कल सर्कल घूम रहा है, उसको हम काटते हैं ज्ञान के आधार से, है ना, वृत्ति को बदलने के लिए दी की आवश्यकता है। जितना मैं ज्ञान को अप्लाई करना शुरू करती हूं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर सीन में, मैं ज्ञान को यूज जितना मैं करती जाऊंगी उतना मेरी वृत्ति बदलता जाएगा। फिर हर कर्म जब करती हूं जो निस्वार्थ वृत्ति से मैं कर्म करना, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, उस इंटेंशन से मैं कर्म नहीं कर रही हूं, चाहने के हिसाब से नहीं, देने के हिसाब से मैं कर्म कर रही हूं, मुझे चाहिए नहीं, देना है, देवता बनना है ना, पवित्रता की दिव्यता लानी है, तो जितना मैं देती जाऊं तो फिर वो दिव्यता, पवित्रता, दिव्यता में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए वृत्ति को परिवर्तन, वृत्ति शुद्ध करने की जरूरत है। और जब भी हम किसी को भी देखें, कैसे देखें, कैसे देखें, बाबा किस रूप से देखते हैं हमें, बाबा किस रूप से देखते हैं हमें, अव्यक्त बाप दादा के सामने कितने भी अपवित्र, बाबा को पता है हिस्ट्री उस आत्मा की, क्या क्या कर्म किए हैं बाबा को, बाबी बाबा तो जानी जाननहार है, फिर भी बाबा किस दृष्टि से देखते हैं, प्यार की दृष्टि, की दृष्टि से, वर्तमान को नहीं देखते या भूतकाल को नहीं देखते, लेकिन भविष्य को देखते हैं। भविष्य में ये मेरा बच्चा सत्ययुग में जाने वाला है, तो इसलिए बाबा कहते लास्ट मणके के साथ भी मेरा इतना प्यार है, है ना, प्यार कम नहीं होता है बाबा का, लास्ट मणके तक भी प्यार कम नहीं होता, उस दृष्टि से बाबा देखते हैं। तो हमें किस दृष्टि से देखना है, किस वृत्ति से देखना है, बाबा कहते हैं कोयले में भी डायमंड को देखो, भले इतना भी बहुत सारे कमी कमजोरियां हैं, लेकिन वो आत्मा, बाबा ने उस आत्मा को चुना है ना, बाबा ने उस आत्मा को चुना है, डायमंड को देखना है ना। वृत्ति और दृष्टि को जितना हम शुद्ध शक्तिशाली बनाते हैं, तो उसके द्वारा ही हम बहुत कुछ सेवाएं कर सकते हैं, दृष्टि और वृत्ति के द्वारा। साधारण साधारण दृष्टि नहीं है, शक्ति भरा हुआ है। इसलिए दादियों से हम दृष्टि लेना क्यों पसंद करेंगे, बाप दादा से दृष्टि क्यों लेना पसंद करेंगे, क्योंकि बाबा की वृत्ति में, दृष्टि में वो ताकत है। मुझे एक बार याद है, ओम शांति भवन में एक बार केवल मधुबन निवासी, तीनों स्थान के मधुबन निवासी और कुछ वीआईपी से बाबा मिल रहे थे, कुछ डायलॉग चल रहा था ज्ञान सरोवर में, वीआईपी के, वो डायलॉग के वीआईपी और मधुबन निवासी तीनों स्थान के, तो ओम शांति भवन में बैठे थे। वो डायलॉग में बहुत मैं बिजी थी, थोड़ा सा थकी हुई थी और थोड़ा स्थिति भी थोड़ा डाउन था, क्योंकि थोड़ा बहुत हो रहा था, ये बहुत कुछ कारोबार हो रहा था, स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं था, तो ऐसे बैठी थी। तो बाबा ने सभी मधुबन निवासियों को बुलाया दृष्टि देने के लिए, मैं भी गई। बाबा की वो आधे मिनट की दृष्टि, केवल 30 सेकंड की दृष्टि, पूरा जैसे शरीर में जैसे करंट जैसे आ गया, और फिर आत्मा पूरी तरह रिचार्ज, जैसे हल्का हल्कापन, बहुत पूरा रिचार्ज में मैंने महसूस किया। देखो बाबा की दृष्टि में इतनी ताकत है, अगर हम मेहनत करें हम बाप समान बन सकते हैं। इसलिए अटेंशन, दृष्टि से सेवा, आज बाबा ने कहा ना कि चेहरे और चलन से सेवा करना है, बोल से सेवा तो वो तो ठीक है, लेकिन आगे चल करके चलन और चेहरा, चलन और चेहरा भी छोड़ो, अभी दृष्टि से सेवा करने की बात है। अगर आगे चल करके तो साक्षात्कार होना है, अगर बाबा को मुझे यूज करना है तो मेरी दृष्टि और वृत्ति इतना शुद्ध, इतनी शक्तिशाली होना जरूरी है, तब बाबा मुझे यूज करेंगे ना। मैं भी योग्य बनू तब तो बाबा यूज करेंगे मुझे, मैं योग्य नहीं बनूंगी तो बाबा कैसे मुझे यूज करेंगे, है ना। और लास्ट जो पवित्रता के जो डेप्थ है, किससे पता चलेगा, किससे पता चलेगा, किससे पता चलेगा, स्वप्न, है ना। बहुत साल से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, अन्न शुद्धि है, रोज मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी स्वप्न में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, व्यर्थ कुछ बातें आ रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं संस्कार में वो अशुद्धता है, कहीं ना कहीं अशुद्धता भी ना हो लेकिन व्यर्थ भी हो सकता है ना। तो उससे पता चलता है कि मेरे अपनी आत्मा की पवित्रता की गहराई, उस पर हमें मेहनत करना है, है ना। तो स्वप्न हमारा शुद्ध हो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। स्वप्न कौन से स्वप्न आता है, सारे दिन जो कर्म किए होंगे कभी ना कभी वो बातें वो लोग आते हैं, या फिर कभी कभी बहुत दिन पहले घटी हुई बातें वो स्वप्न में आ जाते हैं, या कुछ ऐसी कुछ रैंडमली कुछ ऐसे बातें आ जाते। तो उसको जब हम समझेंगे क्यों आया है, समझते हुए उस पर जब हम मेहनत करते हैं, तो उस आत्मा को उन लोगों को जब हम सकाश देंगे पवित्रता की शक्ति की, जो भी जिन उन आत्माओं को जो भी चाहिए, उन आत्माओं को वो शक्ति वो गुण का सकाश जब हम देते हैं, ये कहीं ना कहीं कनेक्शंस है ना, पूरे साइकिल पूरे कल्प का वो कनेक्शन है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो इसीलिए वो पवित्रता की वाइब्रेशंस उन आत्माओं को देने की जरूरत है। और रात को सोने से पहले बाबा को याद करके एटलीस्ट 15-20 मिनट शक्तिशाली योग करके, या फिर एक अव्यक्त मुरली के पेज, एक पेज एटलीस्ट, पूरा अव्यक्त मुरली नहीं, पूरा अव्यक्त मुरली पढ़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक पेज भी एक पैराग्राफ भी पढ़ करके उसी योग में अगर सोते, उन्हीं विचारों के साथ जब हम सोते हैं, तो फिर वो जो संस्कारों पर उसका असर पड़ता रहेगा और जल्दी संस्कार परिवर्तन होने में मदद मिल जाता है, है ना। तो ये 8 लेवल मिल गया, तो अपने आप को चेक करना है अभी, हर बात के लिए अपने आप को कितना पॉइंट देते हैं आप, अपने आप को देखिए। 0 से 10 तक अगर आप पॉइंट्स देना है, बिल्कुल नहीं है पवित्रता उसमें, 0 दे सकते हैं, और उसमें पूरी तरह पवित्रता है तो 10 दे सकते हैं। अब अपने आप को ये होमवर्क है, उसके बारे में सोच करके आप लिखना जरूर, संबंध संपर्क में कितना मेरी पवित्रता है, कर्म में कितना पवित्रता है, फिर देह भोजन व्यवहार ये जो भी शरीर के साथ जुड़े हुए, और मन बुद्धि दृष्टि वृत्ति और क्या हुआ स्वप्न और कोई छूटा बोल बोल कर्म में आ गया ना, भोजन भोजन हाँ भोजन वो शरीर के साथ जुड़ गया था, ठीक है। ये सब हम चेक करके फिर अपने आप को नंबर दे तो फिर पता चलेगा आप कहाँ हैं और कितना पुरुषार्थ करने की जरूरत है ना। और बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत है बस, और वरदान के रूप में जब बाबा से लेते हैं तो और ही सहज हो जाएगा। और लास्ट में जब एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि अपने आप को वरदान दो पवित्र भव योगी भव का, और दूसरा है बाबा से वरदान लो, और तीसरी बात है जो निमित्त है ब्राह्मण परिवार उनसे वरदान ले। तो चले कुछ समय के लिए वो हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले योग में बैठते हैं, सबसे पहली बात खुद को वरदान दें, है? खुद को वरदान कैसे देंगे, भस्मासुर भी भस्म हो गया था ऐसे ना लेकिन हम पॉजिटिव करेंगे, है? खुद को ये वरदान देना है, मैं आत्मा परम पवित्र हूं। मुझ आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। स्वरूप पवित्रता है। स्वधर्म स्वधाम पवित्रता है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। परम्पर आत्मा भव योगी भव। मैं हूं ही परम पवित्र। मेरा ओरिजिनल रूप परम पवित्र। उस बात को एक्सेप्ट करें। अभिशु बाबा से पवित्रता का वरदान लेंगे। पतित पावन शिव बाबा, मेरा सद्गुरु है। बाप दादा कंबाइंड होकर उनका वरद हस्त मेरे सिर पर। बाप दादा बहुत शक्तिशाली दृष्टि देते हुए, ये वरदान दे रहे हैं। बच्चे परम पवित्र भव, योगी भव। बाप दादा मां की विशेषताओं को देखते हुए मुझ आत्मा के प्रति विश्वास निश्चय है बाबा का। सत्युगी दैवी राज्य परम पूज्यमा है। जब दादा को मुझ में निश्चय है, मुझ आत्मा चे, मैं आत्मा परम पूज्य हूं। संपूर्ण बाप दादा से पवित्रता की किरणों को लेते हुए ग्रहण करते हुए पूरे संसार में फैला रही हूं। बाबा से पवित्रता की किरणों को लेते हुए संसार में फैला रही हूं। आत्माओं को पवित्रता की अंजलि दे रही हूं। क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र संसार निर्माण करें। ओम शांति।